सूरज में जितनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी।
ओम शांति। फ्रेश फ्रेश फ्रेश। नहीं, मैं फिर भी रिपीट करके पूछना चाहूंगा, फ्रेश? मुझे याद आया, पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉन्ग बैक लेट 60s में ऐसे ही क्लास में बैठे थे, हमारे एक टीचर थे मिस्टर YP यादव। ही एंटर्ड द क्लास, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशन होती थी, मुझे नहीं पता आज कुछ बदल गई है तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त ट्रेडिशन होती थी कि जब टीचर आता था तो क्लास पहले आई हुई होती थी। अब कई बार टीचर पहले आता है, क्लास बाद में आती है, तो कई बार अक्सर लगता है। खैर, वो टीचर आए, अपना पोडियम पर खड़े हुए, और हमारी क्लास में एक सिख जेंटलमैन थे, मैं नाम भूल गया, चलिए फॉर दैट मैटर अमरजीत सिंह कह लें उसको। तो खड़े होते ही उन्होंने कहा, मिस्टर अमरजीत, यू हैव लॉस्ट समथिंग। उसने किताबें, नो सर, इट्स ओके। अगेन ही सेड, आई थिंक यू हैव लॉस्ट समथिंग। वो बेचारे ने जेब देखी, पर्स देखा, रुमाल देखा, No, it's okay, sir. It's okay. I haven't lost anything. Everything is with me. He said, still I believe you have lost something. Usko bada ajeeb lage. Main keh raha, mera kuch gum nahi hua. Aur wo keh raha, phir gum ho gaya. Teacher ko kya ho gaya? He said, sir, I think it's okay. I haven't lost anything. And even if I have lost anything, it should be all right. It should be insignificant. Jaise usne kaha it should be insignificant, the teacher all, oh no, it cannot be insignificant. You have lost something very serious. Phir usko samajh aa gayi. Kehta hai, sorry sir, sorry. I do realize I have lost something. To humne phir pucha, sir, what's... Teacher said, no, it's between him and me, it's okay. And he started the class. Class ho gayi, class ke baad humne us sardar ji ko pakad liya. Kya baat thi? What was it? Sir keh rahe hain, aapki aur uski baat hai, aur sari class mein itni der tak wo keh rahe hain, you have lost something, aap keh rahe ho, mera kuch nahi gum hua, baat kya hai? वो कहता है, जब सर आए थे ना क्लास में, तुम सारे खड़े हुए थे, अकेला मैं बैठा रहा, तो दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाट आई हैड लॉस्ट। समझ गए क्या? नो, स्टिल इट इज समथिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझ गए क्या? When I asked you what or kaiyon ne fresh pe maine bar bar pucha, bole yes, why couldn't we say yes sir? Bura nahi maane, mujhe sir ki wo talab nahi hai, mujhe mere mein ego bhi nahi hai, but still irrespective of the age, हम किस, मैं मैनर सिखाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, नो आई एम नॉट हियर फॉर दैट, लेकिन स्टिल मुझे लगा, हम तो आपस के इनफॉर्मल है ना, आप कई बार कहते हैं कि आपस में हम दोस्तों की तरह बात करते हैं, हमें आपका बुरा नहीं लगता, मुझे भी आपका बुरा नहीं लगता, तो खुल के बात कर सकते हैं ना। ओ नो, डोंट से, अगर आप सॉरी कहेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों में नो सॉरी है ना,
आपको देख के भूल
मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं तो बाबा को कह रहा हूं, बाबा देखो क्या हो रहा है इनको, बाबा ने मुझे कब माया का रूप बना दिया कि मुझे देखते ही आप बहुत कुछ गलत करने लग जाएं। बाबा ने तो बल्कि मुझे सर्विस के लिए भेजा है, तो ऐसी डिससर्विस तो मारेगा बाबा मुझे, प्लीज नहीं, मुझे उससे सजा नहीं खानी है, मुझे तो वो मेरा दोस्त है, मैं उससे उसे दोस्ती नहीं बिगाड़ सकता मैं, नो नो। वो तो जैसा मेरा पक्का दोस्त है वो वैसा कोई भी नहीं है, रियली मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके साथ बहुत बार लड़ता हूं। और मैं यहां तक आज किसी से बात भी कर रहा था, मैं ये कह रहा था मैं कभी ऐसी बात हो ना तो कुछ काम में एकदम से अड़चन या जैसे आ जाए, तो जैसे मेरे घर में कंप्यूटर टेबल पर ब्रह्मा बाबा का चित्र ये रखा हुआ मैंने जैसे भी, तो मैं एकदम कहता हूं तेरे को दिखता नहीं है हा? क्या है ये, अगर रोकना था तो पहले मुझे ना बिठाता यहां पे, शुरू कर दिया रुकवा दिया, क्या मजाक है। मैं तो उससे ऐसे बात करता हूं और उठ के आता हूं ना बाद में, और फिर बाद में ऐसा लगता है वो मुझे कह रहा है कि नहीं अब जा, मैं उसको फिर कहता सोच ले, ऐसे नहीं, मैं डोंट वेस्ट माय टाइम, मैं बाबा को बोलता हूं डोंट वेस्ट माय टाइम, तेरे को क्या करना है, तू तो फ्री का फ्री है, मुझे काम करना है ना, 24 घंटे तो मेरे हैं, तेरे 24 घंटे थोड़ी हैं। हां बिठाना है तो ढंग से बिठा, नहीं बिठाना तो मौज कर तू भी और मैं भी, ये है ना दोस्ती, तो ऐसे बात करें ना, देखो कैसा अच्छा दोस्त बनता है, फिर उसको भी गर्ज होगी ना, दोस्तों को तो दोनों को गर्ज, ये थोड़ी है कि मुझे मुझे गर्ज है उसकी और उसको मेरी गर्ज नहीं है, क्यों नहीं है भाई, फिर हम दोस्त किस बात के हैं, अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं है फिर मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है, और ठीक है ना, दोस्त के तौर पर तो यही चलेगा, और संबंध बना लेंगे तो बाद की बात है, दोस्ती में तो यह है। सो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हाँ है ना, है ना, यानी स्टूडेंट्स के बिना टीचर क्या है, कुछ भी नहीं ना, और टीचर के बिना स्टूडेंट्स भी, वो स्टूडेंट तो नहीं रहते, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं है वो, जब टीचर की बात करते हैं तो इमीडिएटली स्टूडेंट की कल्पना आती है, और जब स्टूडेंट की बात सोचते हैं तो इमीडिएटली टीचर की कल्पना आती है, हो ही नहीं सकती ना दूसरी कोई बात। चले चले हो गए ना फ्रेश, अब मुझे लगता है जब तक दो चार मिनट पांच मिनट गपशप ना करें, जैसे होता है ना सवेरे सवेरे बस का ड्राइवर भी बस को स्टार्ट करता है, वो पांच मिनट उसको चालू रखता है जब तक जो है वो ठीक तरह, नहीं सवारी की बात नहीं है, इंजन जो है वो ठीक ना चल पड़े तब तक वो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है ना, तो थोड़ा सा जब तक हंस ना ले एक दो बार, कोई नींद का झुटका है वो दूर हो जाए, कोई घर की बात है वो परे निकल जाए, कोई उदासी परेशानी है वो खत्म हो जाए, तो जरूरी है, मेरी हमेशा से हैबिट रही है लौकिक में भी क्लासों में, जब तक एक दो बार हंसाया ना जाए मुझे मजा ही नहीं आता क्लास का, खुद भी हंस लेता हूं क्योंकि मैं भी तो थकता हूं ना, आज सच बात यह है कि मुझे पता ही नहीं था आपकी क्लास है, गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने लगभग 2:45 के करीब फोन किया, भाई जी आपकी क्लास, मैं कहा मेरी क्लास तो आज नहीं है, कहते है ना देखो, ओ मैंने कहा मेरी क्लास है, फिर मैंने इनसे कहा, मैं फिर देखा मेरे पास किताब भी नहीं है, तो वहां से निकला गुप्ता जी के पास डायमंड हाउस में आया, उनको जगाया, सोए हुए को जगाया मैंने, गुप्ता जी किताब दो मुझे, इनके पास भी नहीं थी, फिर हम अशोक भाई के पास गए वहां से किताब ली, फिर इतने में थक गए, गुप्ता जी कहते चाय पी लो फिर आराम से करना, फ्रेश हो जाओ, हो गया ना, हाँ तो जरूरी है ना, चाय तो बाद में 5:30 बजे पिलाऊंगा, अभी नहीं चाय 5:30 बजे वायदा प्रॉमिस, 5:30 बजे आप मेरे को रोक सकते हैं, आप मुझे बेशक इशारा कर देना, क्योंकि उसमें मुझे ये आश्वासन रहेगा कि चाय के बाद हमने फिर मिलना है, इसीलिए नहीं नहीं आप अगर बोर हो जाएंगे तो और टीचर भी बुला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होता, चलिए थैंक यू, देखो कितना कितना आदर प्यार मिलता है आपस में, मैं भी बोर नहीं होता आपसे बात करते हुए, चले आइए कोर्स 4 यूनिट 5 और बड़ा सिंपल टॉपिक जो आप सारे जानते हैं। वैसे तो कहा जाए कि इसकी नॉलेज तो आप इस बुक को पढ़े बिना भी पेपर में लिखाएंगे तो बहुत अच्छा लिखाएंगे। क्यों? या तो आप टीचर हैं तो आपने क्लासों में पढ़ाया होगा, टीचर नहीं हैं तो अपने बच्चों को कराया होगा ये टॉपिक, स्कूल के लिए तैयार करवाया होगा, और अगर आप पेरेंट भी नहीं हैं तो फिर आपने लेक्चर्स में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं तो जरूर कराया होगा। सो इसीलिए ये टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब देखिए, जो हमारे इस दुनिया में वर्ल्ड में जो हमारे कुदरत ने परमात्मा ने शिव बाबा ने अपने बच्चों को मनुष्यों को जो रिसोर्सेज दिए, नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में दिए, हमने उनको इस्तेमाल तो किया। बाबा ने भी कहा ये अखुट खजाने हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि बाबा ने अखुट खजाने तो दैवी अखुट खजाने कहे थे ना, और हम उनको भौतिक अखुट खजाने मान बैठे कि पृथ्वी के अंदर जितना पानी है, यहां जितनी वायु है, जितनी ग्रीनरी है, जितना सॉयल के अंदर फर्टिलिटी है, पार है, वो अखुट है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। चलो अखुट भी अगर हो तो हमने उसको वेस्टफुली, अंधाधुंध, बिना जरूरत के भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर पृथ्वी से नीचे से निकालने हैं हमने तो बिना सोचे हम क्या कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, इम्बैलेंस्ड है, निकालते गए। तो परिणाम आज ये हो रहा है कि वो डिटीरियोरेशन, वो जो पतन है, डाउनफॉल है उन रिसोर्सेज का, वो स्लो डिटीरियोरेशन धीरे 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 इतना बढ़ गया कि अब एक क्राइसिस का लेवल आ गया है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि पिछले 40-50 साल के अंदर मनुष्य डर गया है, एक तरह का जैसे कहते हैं कांप उठा है, जैसे किसी को मौत की सजा मिले और उसे जेल में रखा जाए और वो मर्सी पटिशन कर दे प्रेसिडेंट के पास, तो उसका जीवन कैसा रहता है? रोज, हर रोज सुबह वो क्या सोचता है? उसको ये ख्याल कम आता है कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट करके उसको जो है कन्वर्ट कर देगा लाइफ इंप्रिजनमेंट में, या माफ भी कर देगा, ये ख्याल कम आता है उसको। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, रोज नजर आने वालों के अलावा कोई नया ऑफिसर नजर आ जाए तो वो डरता है, कहीं ये प्रेसिडेंट की तरफ से मेरा रिजेक्शन लेटर तो लेकर नहीं आया कि आपकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई, कल या परसों या आने वाले 15 दिन में आपको हैंग कर दिया जाएगा। तो जहां तक नेचुरल रिसोर्सेज की बात है ना, मनुष्य की भी आज यही हालत हो रही है। तभी तो पिछले कई सालों के अंदर कहीं वर्ल्ड समिट कर रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं एनवायरमेंट सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं जो है रियो डी जिनेरो के अंदर हो रही है, कहीं जापान में क्वेटो में हो रही है, यानी ये मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या करें, पृथ्वी को बचाओ, जैसे ये सवाल आ रहा है बार बार। आज से पहले या आज से 20-25 साल से पहले क्या हमने सुना था इस तरह से? वन महोत्सव तो तब भी मनाते थे, लेकिन अब नहीं, बहुत पेड़ लगाओ, ग्रीनरी, और यहां तक कि ब्रह्मा कुमारीज ने तो आपको वो कैंपेन का पता है ना, ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड। ग्रीन, जितना हम अर्थ को ग्रीन करते जाएंगे या जितना हम जो है माइंड को क्लीन करते जाएंगे, उतनी अर्थ ग्रीन होती जाएगी, या जितनी अर्थ ग्रीन होती जाएगी माइंड क्लीन होता जाएगा। इंटर रिलेटेड बना दिया हमने दोनों को, इतनी अवेयरनेस अब पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हर देश के अंदर, स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर, सिलेबाई के अंदर यह टॉपिक जोड़ा जा रहा है, इको बैलेंस, इको बैलेंस। कई बार मैं बच्चों से, भाई इको क्या होती है, भाई इको क्या है, तुम पूरा शब्द नहीं बोलते, इकोलॉजी बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस बोले, या तो इको बैलेंस। जैसे कई बार हम किसी से पूछ ले, कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, इको पोल साइंस, यानी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी पूरा सब्जेक्ट भी नहीं बोलना। तो वही बात जो है, इको बैलेंस की बातें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो है स्कूलों के अंदर टॉपिक मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आप जो है क्या करेंगे। बच्चों को सिखाया जाता है अपने पड़ोस में दाएं बाएं जाकर जो है उनको बोलो कि वृक्ष नहीं काटने हैं, नए वृक्ष लगान। यानी ये इसीलिए हो रहा है ना कि हम जो है इस बैलेंस को बनाएं, खत्म ना करें। और ये हुआ क्यों है, हमने अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा ना, हमें पर कैपिटा इनकम नजर आती रही, हमें जीडीपी नजर आता रहा कंट्री का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी लेवल, किस देश का जीडीपी कितना है, यानी किसका जो है पर कैपिटा इनकम कितनी, और होड़ लगी आपस में। आज भी अगर हम बात करते हैं कौन सा देश रिच है, तो यही हमेशा यही बताया जाता है, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $60,000 है, $60,000 पर एनम पर पर्सन इन अमेरिका, ये इनकम है वहां की, और बड़ा घमंड किया जाता है। लेकिन ये किस कॉस्ट पर मिला हमें, इसके लिए क्या कीमत चुकाई हमने, वो नजर नहीं आता। हमने बिल्कुल जो है जितने भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल मींस जो हम दोबारा जेनरेट नहीं कर सकते। आप खनिज पदार्थ निकाल ले जमीन से, दोबारा खनिज पदार्थ पैदा कर सकते हो, नहीं हो सकता ना। यानी वो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते रहे, खत्म करते रहे, अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाते रहे। और जिनका पर कैपिटा इनकम बढ़ाया, वो तो 50 साल बाद 60 साल बाद मर गए, उनकी जगह दूसरे आते रहे, लेकिन पृथ्वी का क्या होगा ये हमने नहीं सोचा। जो वृक्ष हमने काट दिए उनकी जगह लगाए नहीं, जो खनिज निकाल लिए नए बनने नहीं, जो ऑयल जो है हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जमीन से, वो दोबारा इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है। ये तो ऑयल और ये वो सारे तो हजारों सालों में जाकर बनते हैं ना कहीं नीचे से। ये इतना डिप्लीशन हो गई इन चीजों का, और फिर उसके साथ एक्सेप्शनल ग्रोथ इन वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया, बढ़ती गई पॉपुलेशन। 1947 में अगर आप देखें भारत की पॉपुलेशन क्या थी, लगभग 33 करोड़ के आसपास थी, और उस समय तो वो पाकिस्तान भी हमारे साथ था जुड़ा हुआ। और आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमने इस 33 करोड़ के साथ सिर्फ ओनली केवल 1 अरब जोड़ा है, बस और ज्यादा नहीं। अब हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ के करीब है, अराउंड दैट, 125 होगी, 135 होगी, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। इतनी पॉपुलेशन हो गई, और बात हम सिर्फ भारत की नहीं कर रहे ना, जब एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात होगी तो केवल भारत तक लिमिट तो नहीं रहेगी ना। दूसरे कंट्रीज ने भी अपने को रोका किया, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही। चाइना ने बीच में 2 चाइल्ड नॉर्म लगाया, अब उसके बाद वन चाइल्ड नॉर्म है, देखें आप, यानी इसको हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं, पॉपुलेशन की ये नेगेटिव ग्रोथ है। क्यों? कि वन फैमिली वन चाइल्ड, यानी दो हैं पति पत्नी लेकिन बच्चा एक होगा, मींस दो के बदले एक, नेगेटिव ग्रोथ हो गई ना, माइनस ग्रोथ जाएगी ना वो तो अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद। और वो एक एस्टीमेट है कि आज चाइना की पॉपुलेशन अगर 1,34,00,000,000 के करीब है, जब हमारी पॉपुलेशन उस वक्त 1,15,00,000,000 थी, उस वक्त का एस्टीमेट है, तो अगर उनकी 1,34,00,000,000 इंडिया की 1,15,00,000,000 है, तो आने वाले 20 साल में दोनों की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी और सन 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा होगी। ये एस्टीमेट है, क्या होगा कम ज्यादा और होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कहने की बात ये है कि अगर हम इस तरह से ग्रो करेंगे तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे। काफी पहले हम पढ़ा करते थे पॉपुलेशन के ऊपर एक आर्टिकल, तब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्लासेस में लगा हुआ था, उसके अनुसार ये था कि उसने एस्टीमेट दिया था कि हम हर रोज अपनी दुनिया के साथ एक नया इंग्लैंड जोड़ लेते हैं, जहां तक पॉपुलेशन की बात है, हर रोज डेली वन न्यू इंग्लैंड इज एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन वन मंथ वन ऑस्ट्रेलिया इज एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इस गति से हम बढ़ेंगे, और उसने क्या बताया हमें कि एवरी सेकेंड 3 more children आर बॉर्न anywhere in the world, every second 3 children are born। और उसने इतने अच्छे ढंग से लिखा था, वो कहता है कि जब तक मैं आपको ये कहूं कि every second 3 children are born, this will take me 3 to 4 seconds and another 12 children are born by the time I complete this sentence। इससे पहले कि मैं ये sentence पूरा करूं 12-15 बच्चे और पैदा हो गए। और आप फिर पूछेंगे, सर अच्छा इतना, लो 5-6 बच्चे और पैदा हो गए। और कोई कहे नहीं सर ये नहीं हो सकता, 6 और पैदा हो गए। दैट इज हाउ वी आर ग्रोइंग। तो डेथ रेट तो अपने आप कम होगा ना, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होंगी, टेक्नोलॉजी विकास करेगी, यानी वी हैव पुश्ड द बैरियर्स ऑफ डेथ फार बिहाइंड। एक सर्वे के मुताबिक सन 1915 के अंदर इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज एज जो थी एक्सपेक्टेड 27 years था, आज इट इज मोर देन 65 years। लेडीज के लिए शायद 67 और पुरुषों के लिए 70, लगभग कुछ ऐसा है एट प्रेजेंट। तो आप ये देखिए, जो 27 साल और 70 साल के बीच में मरने वाले थे वो मरे नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सबको लगता होगा हम सारे ही उसी एज ग्रुप में हैं, जितनी पूरी की पूरी क्लास, कोई ऐसा है जो 70 साल से ऊपर है? कोई भी नहीं है 70 से ऊपर है। हाँ 70 से ऊपर, 70 साल से ऊपर 1-2 और बाकी कोई 27 से कम हो, 27 से कम 27। तो देखो ये बस यही लोग बचे होते, हम में से तो कोई ना होता। सो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हैवक कर रही है। और इसके साथ एक और चीज देखे, आपने नोट की हो ना की हो, मैंने देखा उधर जहां मैं रहता हूं जिस शहर में, मैं एक दिन वैसे ही हम शाम को सैर कर रहे हैं, मैंने युगल से कहा, मैंने कहा मैं कई दिन से देख रहा हूं, सोच रहा हूं आपसे बात करूंगा, वो कभी हम छोटी चिड़िया देखा करते थे, चिड़िया छोटी, स्पैरो, वो मैं कहा मुझे नजर नहीं आती, मैं कहा मुझसे गलती हो रही है कहीं, यानी मैं देख नहीं पा रहा हूं या आपके साथ भी ऐसा है। तो उनको भी ख्याल नहीं था, कहते हां आपकी बात ठीक है, मैंने नहीं देखी, काफी टाइम हो गया स्पैरो नहीं देखी। यानी स्पैरो ही खत्म होती जा रही है, वो छोटी सी चिड़िया कितनी अच्छी सी नहीं, ये तो नहीं कि पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, मेरा कहने का भाव ये है कि इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की, जो खत्म होती जा रही हैं। और ये बर्ड्स और एनिमल्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कितने यूजफुल हैं, हमारे में से शायद जानते हैं सारे इस बात को। चाहे हमें कितना गंदा लगता हो ये कौआ या ये दूसरे सुअर या ऐसे जो हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बहुत यूजफुल हैं। अगर ये ना हो तो शायद समाज के अंदर एक क्लीन लाइफ जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन अब बहुत सारे इसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन करके, प्रॉब्लम करके, बहुत सारी स्पीशीज बर्ड्स की, एनिमल्स की खत्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। नो, वट एवर बी द रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ऑफ अवर ग्रोथ, बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल्स, द वे वी लिव। यानी हमने मोबाइल कर लिया और चिड़ियों को मोबाइल बना दिया, निकलो यहां से, भागो यहां से। सो इस तरह की सिचुएशन हो रही है। सो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज नॉट ए स्मॉल इश्यू कि जिसको हम सुन के ठीक है ना, हो रहा है ना, चल रहा, नहीं, इट्स वेरी सीरियस। एंड मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू फील द इंपैक्ट ऑफ दिस डिटीरियोरेशन इन अवर ओन लाइफ। इसका जो आने वाला डिटीरियोरेशन है, हम और आप अपने इसी जीवन के अंदर अनुभव करने वाले हैं। बाबा जब कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर होगा तो पानी के लिए होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम उसको खत्म कर रहे हैं ना। वो वाटर लेवल, वो टेबल जो कभी 10 गज पे होता था, अब 100 गज पे भी पानी नहीं मिलता कई जगह पर, वो नहीं मिलता वहां पर ना। वो बारिश, अब आप देखें ना, हम बड़े खुश होते, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मौसम में तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन कौन ला रहा है? हम ही तो ला रहे हैं ना। यानी अब सर्दियों में अगर बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी, तो इफ यू डोंट हैव रेन्स एंड स्नो इन विंटर, बी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट वाटर इन समर। अगर सर्दियों में ये चीजें नहीं मिलेंगी, नहीं होंगी, तो गर्मियों में फिर पानी भी नहीं मिलने वाला है। एनवायरमेंट ये नहीं है कि सर्दी का बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, अब सर्दी आ गई तो वो डिब्बे का खोल देंगे और वो बंद हो जाए, वो चीज नहीं है। इंपैक्ट है आपस में, सर्दी गर्मी इंटर रिलेटेड है। जो इन चीजों को, मौसम को पढ़ते हैं, करते हैं, वो बताते हैं कि इनका इंटेग्रेटेड इफेक्ट केवल एक साल का एक जगह पर नहीं है, पूरी जमीन पर इसका असर है आपस में। तभी अब चिंता लगती है ना, ओजोन क्या है, अब जागृति आ गई, ओजोन क्या है, पहले सोए हुए थे ना हम, वही मैं कह रहा हूं ना, अब पता लगने लग गया ना। सो देखें ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस तरह का हो रहा है हमारे यहां। आपकी बुक कुछ पॉइंट्स बताती है, मैं उनको वन बाय वन बोलता हूं, आई मीन बोलता मींस टेकअप करता हूं। जैसे पहले पहले तो हमने किया वाटर का, एयर का, लैंड का पोल्यूशन। अब अगर हम बात करें लैंड का या वाटर का, इवन एयर का, तो हम इसको खुद कितना गंदा कर रहे हैं। वो एक नाम सुना था पिक्चर का, राम तेरा तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली। राम की गंगा है ना, इसीलिए हम परवाह नहीं करते, हमारी थोड़ी है। राम ही करेगा साफ, उसकी गंगा है वो जाने। मेरी गंगा होती तो मैं साफ करता ना उसको, क्यों मैं अपने घर को साफ रखता हूं ना। अब गंगा मेरी हो तो मैं साफ रखूं, अपना घर मेरा आके देखो ना कैसे चमक रहा है। अब घर बड़ा साफ सुथरा होता है, जरा भी कहीं मिट्टी हो तो हमारे पति पत्नी की या बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाए, ये सफाई क्यों नहीं है। अरे भाई, घर अपना है तो पृथ्वी भी तो अपनी है, ये गांव भी तो अपना है, ये शहर भी तो अपना है, इसको साफ कौन करेगा। जो कूड़ा करकट गंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा उठा के हमने गंगा में या दूसरी नदियों में फेंक दिया हमने, और हम निश्चिंत हो गए, तो अल्टीमेटली वो घूम के असर किस पे पड़ेगा, मेरे पे ही पड़ेगा ना, वापस तो वहीं आएगा ना। अब हमें लगता है कि गंगा को साफ करना चाहिए, अरे खाली गंगा को गवर्नमेंट साफ करेगी, अब हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट हमने बना दिया, वो गंगा साफ तो हो जाएगी, लेकिन वो कब तक साफ रहेगी गंगा। जहां से आपने साफ करनी शुरू की जब तक एंड पर पहुंचेंगे, पहले वाला हिस्सा फिर उतना गंदा होगा। जब तक हम सारे साथ नहीं लगते और एक अपनी स्वभाव नहीं बनाते, हैबिट नहीं बनाते कि हमने इस पानी को, चाहे वो गंगा से आ रहा है, जमुना से आ रहा है, कुएं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, पानी के रिसोर्सेज को हमने टॉक्सिक वेस्ट नहीं डालना उसके अंदर। जितनी भी गंदगी है वो उसमें डालते हैं, वो नहीं डालनी है हमने उसको। दुनिया भर का इंडस्ट्रीज जो है अपनी चिमनियां लगी हुई हैं, धुआं निकल रहा है उसमें जा रहा है, वो भी है चमड़े की इंडस्ट्रीज जो है वो कितना टॉक्सिक है, कितना गंदा है। वो एयर को भी पोल्यूट करता है, वाटर को भी पोल्यूट करता है, अर्थ को भी, सॉइल को भी पोल्यूट करता है। वो इंडस्ट्रीज जो है अपना निश्चिंत होकर अपनी चिमनियों से ऐन धुआं निकालते हैं। अब चाहे हम थोड़ी बहुत जागृति आई है, हम कोशिश करते हैं कि उनको रोकें, लेकिन अभी तक रोक तो नहीं पाए ना हम। खूब अभी भी धुआं चलता है, जहां जहां पॉलिटिकल इंपैक्ट है कुछ है, उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कहती, कोई नहीं, अपना भाई है ना। नहीं, वो मैं ये नहीं कहता फॉरेन वाले इंडिया में भेजते हैं उन कंपनियों को, इंडिया वाले उनको इन्वाइट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम इनवाइट कर रहे हैं, हम उन पर कसूर क्यों लगाएं। अगर मेरा घर है और मैं पड़ोसी के जो है जानवरों को कहता हूं, पड़ोसी को कहता हूं तेरे घर में जगह नहीं, मेरे घर भेज दे, कोई बात नहीं भेज दे, अब बांध लो अपने घर में, बांधते जाओ, तो ये पड़ोसी का कसूर थोड़ी है। वो तो और जानवर रखेगा, क्योंकि आप अपने घर में रखने को तैयार हो उनको, वो और बांधेगा जानवर, आप फिर कहोगे ये भी दे दे मेरे घर में। तो ये कमी हमारी है, और फिर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब में यही हो रहा। एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या श्रीलंका है, या इवन जापान का भी कुछ पार्ट है, वो उन सब में ये हो रहा है, सब में ये हो रहा है। यानी एशिया, अफ्रीका फॉर एग्जांपल, वहां भी यही हाल हो रहा है, वहां भी बहुत ज्यादा जो है ये पोल्यूशन हो रही है। फिर हम लकड़ी को काट काट कर जलाते हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, धुआं पैदा कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं साथ में, दोनों तरह का काम कर रहे हैं हम। तो कौडंग यानी उपले जो है जानवरों के हम बना लेते हैं, उनको भी हम चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये देखें जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं, आपने शायद सुना हो, पढ़ा भी हो, इट वॉज परहैप्स इन 2003 or 2, केरला के अंदर कोको कोला की इंडस्ट्री लगी हुई है, और वो इंडस्ट्री डेली 1.2 billion liters of water zameen se nikalti hai. 10 liter se, 9 ke 10 liter se. Aur dekhiye, wo pani ka itna istemal kar rahe hain. उन्होंने इतने पावरफुल पंप्स लगाए हुए जो इलीगल हैं हमारे कानून के मुताबिक पृथ्वी से पानी निकालने के लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ पंप है उससे भी कहीं बड़ा पंप लगा रखा है जमीन से पानी निकालने के लिए क्यों उनको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए उनको डेली और जब वो इतना पानी निकालते हैं तो नेचुरली जमीन से पानी तो निकलेगा कहां जाएगा वहां कुएं ड्राई हो गए नए कुएं खोदे वो ड्राई हो गए केवल यहां तक बात नहीं है फिर जो उनकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर जो है पॉइजन्स हैं और वो पॉइजन्स भी ऐसी हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन की लिमिट से कहीं ज्यादा हैं यानी ह्यूमन बीइंग्स कितना पॉइजन कंज्यूम कर सकती हैं कितना जहर हम खा सकते हैं कि मरे नहीं उस लिमिट से भी कहीं ज्यादा है वो बहुत बहुत ज्यादा है उनके ये कोक पर और जितने भी उनके ब्रांड्स हैं चाहे वो फेंटा है कोक है वट एवर इट इज जितने भी हैं और केवल ये तो एग्जांपल कोक का दिया गया सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स पर ये अप्लाई करता है ना अब ये थोड़ी है कि कोको कोला बनाने में तो जो है एक लीटर बनाने में दस लीटर पानी वेस्ट होता है पेप्सी बनाने में क्या होगा दो लीटर लगेगा और आपको एक छोटी सी बात बताऊं आपने शायद कभी नोट ना की हो आप सबके घरों में एक्वा गार्ड लगा हुआ है ना आपको पता है एक्वा गार्ड का जो आप एक ग्लास साफ पानी पीते हैं उसके लिए कितना पानी वेस्ट होता है पता है आपको पता है किसी को Does anybody know कि एक ग्लास प्यूरिफाइड वाटर पाने के लिए कितना यानी 3 times वेस्ट होता है अगर 4 glass पानी है उसमें 1 glass पीने का 3 glass जो है वो निकल जाता है वेस्ट जाता है Whatever, यानी this is happening, this और फिर होता क्या है इम्यूनिटी तो हम अपनी खत्म कर रहे हैं ना हम बचपन में छोटे थे ना अपना खेलते थे कूदते थे घर आए जैसा पानी है जैसा हाथ है पी लिया पानी हां बुरी बात है वो समझाया जाता है नहीं ये तो गंदी आदत है ना है आदत तो गंदी है लेकिन हम मरे तो नहीं ना बीमार भी नहीं पड़ते थे डीट थे चाहे कह ले कैसे थे हम जिद्दी थे कि नहीं बीमारी को तो नहीं आने देना हम खेलते थे मुझे याद है उधर एक ग्राउंड था कमाल की बात तो यह है उस वक्त वो ग्राउंड था ग्राउंड के पास एक नदी बहती थी और उस जैसे खेलते खेलते थके जाके नदी से पानी पी आते थे आहा क्या मजा ठंडा ठंडा पानी होता नदी का पानी आज के नदी का ओ नो मैं तो अपने बच्चों को दूसरे के घर का पानी नहीं पिलाती आप नदी की बात करते हो हम तो नदी का पानी पी जाते थे कुछ नहीं हुआ ना अब तक तो कुछ नहीं हुआ अब प्रॉब्लम यह हो गई कि वो उस शहर की वो नदी ही खत्म हो गई वेस्टर्न जमुना कैनाल हिसार शहर में थी पहले अब नहीं है ये हाल हो गया पानी की अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज हमने इसको क्या नाम दिया क्या कारण दिया भगवान जाने लेकिन सिचुएशन तो ये हुई और हम उस वक्त छोटे थे कह लें कि लेट 40s में 50s में कह लें हां और आज कितने एक साल हुए 50 और इस अर्थ के रिसोर्सेज के लिए 40-50 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है लेकिन उस दौरान में नदियां ही खत्म हो जाएं मैं सिर्फ हिसार की बात नहीं कर रहा जब हिसार में एक नदी खत्म हुई है और भी कितनी जगह पे नदियां खत्म हुई होंगी कहीं वही मैं कह रहा हूं कितने रिसोर्सेज खत्म हुए होंगे सो हमने कभी इन बातों की तरफ सोचा ही नहीं कि इस तरह ये इंडस्ट्रियल कैलसनेस मैं कहता हूं ये यानी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो कितना निर्दयी हो सकता है, कितना क्रूर हो सकता है पॉपुलेशन के लिए, ये हमें ध्यान ही नहीं आता है। बेशक हम उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उसके लिए पूरे देश को, पूरी सभ्यता को, पूरे संसार को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह से देखिए, लॉस ऑफ ट्रीज है, जैसे यानी डिफॉरेस्टेशन हो गया। हमने एक टाइम था शुरू शुरू में, इवन सरकार ने भी, जब इंडिया आजाद हुआ, सरकार ने भी माइंड नहीं किया। कई लोगों का आपको पता होगा, कई लोगों का धंधा क्या था, सर आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, मैंने जी लकड़ी की टाल बनाई हुई है, आई मीन द प्लेस वेयर द वुड फायर वुड इज सोल्ड, लकड़ी की टाल है। लकड़ी कहां से लाते हैं, जंगल ठेके पर लिया हुआ है। क्या करते हैं, जंगल काटते हैं ना, काट के लकड़ी सुखाते हैं, सुखा के ले आते हैं, लकड़ी बेचते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन सिस्टेमेटिकली किया गया, वृक्षों को काटो भाई काटो, और इस काटने के परिणाम स्वरूप अर्बनाइजेशन हो गया कि जी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा मकान चाहिए, ज्यादा शहर चाहिए। अब ज्यादा शहर वगैरह कहां से होंगे, तो हमने फॉरेस्ट काट दिए, फॉरेस्ट काट के लोगों को बढ़ाया, बसाया। अब क्या हुआ, शहरों के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए, क्योंकि गाड़ियां बड़ी बन गई, ज्यादा हो गई। हमने ये तो नहीं किया कि गाड़ियां उतनी हो जितना ये शहर टॉलरेट कर सकता है, हमने अलाउ किया कि आपकी गली में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अपने घरों में ना खड़ी करो, सड़क पर खड़ी करो, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी जरूर खरीदो। क्यों, कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का जो है वो प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए ना, प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। इस साल मारुति का कितना एक्सपेंशन हुआ, इस साल दूसरी कौन सी कार की कंपनी इंडिया में आ रही है, हुंडई ने कितना प्रोड्यूस फालतू किया, टाटा ने कितना किया, टेल्को का कितना हुआ, हमने उस पर जोर दिया दबा के। अब हालत ये हो गई कि शहरों के अंदर सड़कें इतनी नहीं है कि गाड़ियां आराम से चल सके, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज का ये हाल है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन सारे शहरों का, बेंगलोर वगैरह, वहां बुरा हाल है। फिर हमें आया कि अब क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं ना, क्या प्रॉब्लम है, हम मेट्रो बना लेते हैं, मेट्रो बना लें। लेकिन मेट्रो बना लें तो फिर गवर्नमेंट भी लोगों को समझाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें पब्लिक, लेकिन गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि कारों को बंद कर दें, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो इस्तेमाल करें लेकिन अपनी कारें जरूर रखें, खड़ी रहें चाहे घर में, घर में जगह नहीं। हमने ये नहीं किया कि जिसके पास घर में कार रखने की जगह है उसको कार खरीदने की परमिशन दे, पहले आप जगह दिखाओ या जगह खरीदो जहां आप कार खड़ी करेंगे, उसके बाद कार खरीदना ना। यानी कई देशों ने ऐसा कर रखा है, सिंगापुर, हांगकांग जैसे, उन्होंने कि कार के ऊपर एक्साइज और रोड टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग कार खरीदते ही नहीं है, कम खरीदते हैं। अब इंडिया में थोड़ी थोड़ी सी साउथ में ये अवेकनिंग आई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बेंगलोर है, वहां उन्होंने कार की कीमत के हिसाब से परसेंटेज रख दी है कार का रोड टैक्स जो है। यानी आपको तकलीफ तब होगी जब आप 6 लाख की गाड़ी खरीदे और उस पर 80,000 या 1 लाख रुपया रोड टैक्स देना पड़े, फिर सोचेंगे नहीं लेते नहीं लेते। अभी तो होता क्या है, 6 लाख की गाड़ी है, 5-6 हजार, 7 हजार, 10 हजार, मैक्सिमम 12 हजार वो रोड टैक्स लग गया, क्या फर्क पड़ता है ना। अब मुझे, मैं अपने शहर में बहुत बार पूछता हूं कईयों को कि अरे तुम्हें कार की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ क्या जरूरत है तुम्हें, छोटा सा शहर है, 6-5-6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कहीं भी, کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کار ہونی چاہیے؟ ڈیلی آپ یوز کرتے ہیں؟ کیا سٹیٹس ہے ہمارا؟ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے مریض کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ بھائی میں تو نہیں مرا ابھی تک، میرے بغل والے کے پاس دو گاڑیاں ہیں، میرے ادھر بغل والے کے پاس تین گاڑیاں ہیں، میں نے آج تک نہیں خریدی، میرے بچے لڑتے رہے کرتے، میں نہیں خریدتا، بولو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پاپا کنجوس ہیں، لو تم خرید لو گاڑی، یہ لو پیسے، تم دوسرے بیٹی کو بیٹے کو یہ تم خریدو گاڑی، اور بولو مجھے نہیں چاہیے بھائی، میرا گزارا ہوتا ہے نا، میں کس لیے خریدوں؟ میں تو بلکہ یہ کئی بار کہا کرتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے، سروے کرو، جن گھروں میں کار نہیں ہے ان کو انکم ٹیکس سے بینیفٹ دو، کیونکہ وہ آپ کی انفراسٹرکچر کو بچا رہے ہیں. ہاں دیکھا نا، یعنی جب ہم فائدے سوچنے پر آتے ہیں تو مل جاتے ہیں، لیکن پہلے کیوں نہیں سوچتے ہم؟ ہاں ہے موبائل ہے، لیکن وہ موبائل بھی ایسا ہے جو میں بچے نے میرے کو، میں جب گیا باہر تو وہاں سے مجھے نائجیریا میں بیٹے نے میرے کو گفٹ دیا، میں نے آج تک موبائل خود نہیں خریدا ہے کبھی بھی، سوری، نہ میں نے وائف کو خرید کے دیا، نہ میں نے خود خریدا، میرے گھر میں لینڈ لائن آج بھی ہے، بس ٹھیک ہے نا. سو چلا، اور سچ بات یہ ہے میرے پاس موبائل ہے لیکن میرے کو اس کے پورے فنکشن نہیں آتے ابھی تک، اس میں کیمرہ ہے، ویڈیو ہے، مجھے نہیں پتا کیسے چلاتے ہیں، سچ بات ہے مجھے نہیں آتا. بچے ہنستے ہیں کئی بار، پاپا آپ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہو، میں کہ پتہ نہیں کس نے بنا دیا. نہیں پریکٹیکل مین نہیں ہوں، ان کی نظر کے اندر تو بالکل امپریکٹیکیبل ان امیجینیٹو پرسن ہوں بچوں کی درشٹی میں، اور بچے تو یہ کہہ دیتے ہیں پاپا آپ کو کیا پتا، چھوڑو نا آپ کو، تو وہ ایک طرح کا یا چھوڑے نا کیوں پرسنل بات کرے، میں وائی شوڈ آئی واش مائی ڈرٹی لینن ان پبلک، رہنے دو کچھ تھوڑا پردے میں رہنے دو، ایسے کیوں. سو ہر گھر میں ہے ریئلی، سو یا پھر ہمیں سوچنا چاہیے، جب بچوں نے ہمیں ڈسکارڈ کر رکھا ہے پھر ہم بچوں کے اوپر اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب بچوں نے ہمیں ڈسکارڈ کر دیا، ریڈنڈنٹ، یوز لیس، آؤٹ ڈیٹڈ، ایسا نہیں تو نہیں آؤٹ ڈیٹڈ کا جیسے جیسے میں یوں کہوں گا تو نہیں، لیکن نہیں لیکن کہوں گا تو نہیں، پھر بھی تھوڑا بہت مطلب من میں ہے، یہ سمجھ لیں میں نے کہا نہیں ہے، من میں ہے. جیسے گھر کے اندر آپ اخبار روز لیتے ہو نا، اور اخبار کٹھی ہوتی جاتی ہے، کٹھی ہوتی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سمجھ گئے ردی. اب آپ کو میرے کو کون خریدے گا سر؟ اچھے ہیں آپ بھی، ابھی بھی آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں. چلیں دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے نوائز پولوشن. چلیے ہم اب کیوں ایسا کہیں، اب وہ پتا تو اس کو ہے، پتا ہمارے بچوں کو بھی ہے نا، میں نے کبھی یہ کہا کہ ان کو ہماری قیمت پتا نہیں ہے، پتا تو ہے، سوال یہ ہے ہماری قیمت کتنی ہے، پرشن تو اس بات کا ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ قیمت تو ہر چیز کی ہے نا. بچوں نے کبھی مٹیریلسٹک قیمت کی بات تھوڑی کی ہے، بچے مٹی یہ تھوڑی گنتے ہیں کہ پاپا آپ اس وقت کتنے روپے پر منتھ کے قابل ہو، یا مما آپ کتنے، وہ بات نہیں، وہ تو ان کو پتا ہے کہ ہاں پاپا کی پینشن آتی بھی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، پاپا آپ اپنے پاس رکھو، وہ تو ان کو آج کل بچوں کے پاس اتنا فنڈ لیکوڈیٹی اتنی زیادہ ہے، موبیلٹی آف منی اتنی زیادہ ہے ریسورس، اس میں وہ آج کل آپ کے بچے پیسے لیتے ہی نہیں آپ سے، آپ بھی کہتے ہو وہ کہتے ہیں پاپا ممی رکھو رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے پیسے، وہ چھوڑو، وہ بات نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہم، بات ویلیو کی ہے. سو بات ہم کر رہے ہیں نیکسٹ جو ہے، جیسے دیکھیے نوائز پولیوشن ہے، نوائز پولیوشن. اب پلیز مجھے کچھ نہیں کہنا آپ لوگ، اب میری آواز شروع سے اتنی اونچی نہیں تھی، اب 37-38 سال تک جب آپ 100-150 کی کلاس پڑھاؤ گے اور بنا مائک کے پڑھاؤ گے تو آواز تو اونچی ہو جائے گی نا، اس میں اب میرا کیا قصور ہے، نہیں نا. تو لیکن ہاں، تو نوائز پولیوشن پھر بھی ہوتی ہے نا، آپ کا قصور نہ بھی ہو تو بھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نوائز پولیوشن کیا ہوتا ہے، جب ہم نوائزی ویکلز ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے، یعنی جو ہمارے لاؤڈ میوزک چلتا ہے گھر کے اندر، بچے جو آج کل چلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کا وہ ہوتا ہے کہ سارا گھر کانپنے لگتا ہے نا. اور میں کئی بار بچوں سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی یہ کیا بج رہا ہے مجھے یہ بتا تو دو، وہ کہیں گے آپ کو سانگ کا پتہ ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ کو کیا بتائیں. اور وہ ہمارا مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے تو وہ کے ایل سہگل سننا ہے، آپ کو منا ڈے چاہیے، سوریا چاہیے، نور جہاں چاہیے، آپ کو تو وہ سننے ہیں، سہگل وہی کے ایل سہگل چاہیے آپ کو. اور وہ ہم ان کو کتنا ہی کہہ لیں بچے اس میں شور ہے، آواز ہے کوئی، یعنی کوئی ورڈ ہے جس کا آپ میننگ بتاؤ، کوئی لاسٹنگ ویلیو بتاؤ. اور پرانے گیتوں کا کسی بھی میوزک کے اندر آپ دیکھیں کسی بھی لائن کا ارتھ ہے نا، آج کا ارتھ نہیں. ارے صاحب مت بولیے کھڑے ہو کے سنتے تھے، آپ مت بولیے، آپ چپ رہیے، آپ بالکل آپ نہیں، آپ کو میں نے پہلے کل بھی کہا تھا آپ کم بولیے آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا، اسی لیے. ہاں جی آپ پھر بول رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے سر؟ ہاں وہ بات بھی ہے، وہ بات بھی ہے، پھر قصور آپ کا رہے گا، ٹاپک ختم نہیں ہوگا، گھڑی 7 بجا دے گی، ہے نا. سو دیکھیے، یعنی کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہم نے نوائز پولوشن کتنا کیا ہوا ہے. رات کے ٹائم ہم ایک دم وہ جاگرن اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور جیسے شرط لگی ہوتی ہے کہ اس گلی میں کسی کو سونے نہیں دینا، کچھ ہو جائے، کچھ بھی مت بولیے کہ اب جیسے ہی آپ منہ کھولیں گے میں آپ کو بولوں گا بند کریے. نہیں نہیں بھائی صاحب، یہ پہلا سٹیپ ہے اور میرا دوسرا سٹیپ آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں نہیں وہ تو نہیں کروں گا، میں آپ کے دونوں پڑوسیوں کو بولوں گا کہ اس کو چپ کراؤ کہ بولنے مت دو. ہاں پلیز ڈونٹ مائنڈ، نہیں آئی ایم ناٹ سیریس. یا تو دیکھیے نوائز پولوشن کتنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے ریلیجیس پلیسز ہیں، ریلیجیس پلیسز پر کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر چھوٹا سا ایک مندر ہے یا مسجد ہے یا چرچ ہے، گردوارا ہے، وٹ ایور جو بھی ہیں، ارے آپ نے سنانا تو کیرتن ہے، جو کچھ بھی ہے جو مندر کے اندر بیٹھے ان کو سنانا ہے نا آپ نے، تو آپ اتنی آواز کر لو کہ بس کمرے تک رہے، بے شک لگا لو مائک، کوئی منع تو نہیں کیا آپ کو، لیکن آپ اتنا اونچا بجائیں اور چھت کے اوپر جو ہے وہ اپنا رکھ دیتے ہیں مائک، وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو ایمپلیفائر سے وہ رکھ دیتے ہیں، اور ساری گلی محلہ یعنی نہیں دیکھتے کہ یہ مارچ کے دن ہیں، اپریل کے دن ہیں، بچوں کے امتحانوں کے دن ہیں، آس پاس مریض ہیں، ہاسپٹلز ہیں، نہیں. ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ اتنا شور کرتی ہیں، پلینز اگر ہیں تو وہ بھی جو ہے ریزیڈینشل ایریاز کے اوپر سے گزرتے ہیں اور ایک دم زوم کر کے جاتے ہیں، کہاں آدمی سو پائے، کہاں چین آئے گا. फिर मनुष्य कहता है कि मैं अशांत बहुत हूं। तो भाई अशांति तुमने खुद पैदा की है। भगवान ने आके कहा था कि एरोड्रम बनाओ, बहुत ज्यादा जहाज बनाओ, इतनी गाड़ियां बनाओ। अब वो 500 किलोमीटर पर आर चलने वाली गाड़ियां भी आप बना रहे हो, चाइना में जापान में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, इंडिया उसके साथ तैयार हो रहा है कि हम भी जो है 350 किलोमीटर पर आर की उस पे चलाएंगे गाड़ी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, क्या हो जाएगा अगर आप एक घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अक्सर क्या होता है, हम कहते तो है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। घर में भी यहां भी किसी से पूछे, भाई साहब कहां गए थे? कहीं नहीं, ऐसे ही। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। हम जाते कहीं नहीं है, करते कुछ नहीं है, फिर भी फुर्सत नहीं है, हमें टाइम नहीं है हमारे पास। किसी से मिले, आज क्या किया? नहीं कुछ भी नहीं किया आज तो। और फिर कहेंगे बड़ा बिजी था मैं, किया कुछ भी नहीं है। फिर आप बोलते हैं देखिए सिर्फ मैं नहीं हूं। अगर मुझे कई बार लोग कह देते हैं कि सर आप मतलब ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, कई बार गाड़ी लाइन से उतर जाती है या इधर उधर की बात हो जाती है, क्लास हंसती है, ये इनक्रेडिबल मैं नहीं, आप में से भी बहुत लोग इनक्रेडिबल है। देखो आपके सामने कितनी बार रोका है मैंने नहीं रुक पाए। हो गया, आगे चलूं? हाँ सर, आपको चाय की इच्छा हो रही है कि नहीं? सिर्फ दो मिनट रुके, फिर हम चाय के लिए चलते हैं। देखिए नॉइज पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या आइडिया आपका? ग्लोबल वार्मिंग यानी आप देखें, इसका अंदाजा नहीं होता हमें। जब हम सच में डेटा देखते हैं या जब हमें पता लगता है, ज्योग्राफिकली हम पढ़ते हैं और बाद में वो हिस्ट्री बन जाता है कि जी 5 साल पहले यहां एक आइलैंड हुआ करता था, टापू था, अब डूब गया, खत्म हो गया, वाटर लेवल ऊंचा हो गया ना समुद्र का। ग्लोबल वार्मिंग, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ पानी का, समुद्र का लेवल कितना ऊंचा हो जाता है, कितने ज्यादा जो है वो टाइफून्स आते हैं, ये सुनामीज वगैरह जो हमें फेस कर रही। अपनी लाइफ में अभी हमने सुनामीज सन 2000 में सुनने लगे या देखने लगे, क्या हमने 1950 60 70 के बीच में इंडिया में सुनामी का नाम सुना था? बेशक अमेरिका में ठीक है, वहां टाइफून्स वगैरह होते हैं, लेकिन क्या यहां था? नहीं। लेकिन जब आया तो इंडिया ने इंडोनेशिया तक को उड़ा कर ले गया। फिर आपको ध्यान होगा पीछे 6-7 साल पहले जब आया तो क्या हालत, क्या तबाही की थी उसने। और ये दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा टेम्परेचर, यानी क्या है, हमने पूरी अर्थ को, जिन लोगों की थोड़ी एग्रीकल्चरल या रूरल बैकग्राउंड है वो जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर आप सर्दी के अंदर भी कुछ एरिया के ऊपर जो है अगर आप ग्रीन जो है वो कवर कर देते हैं तो जो हीट आती है सन से वो उसके अंदर कंजर्व होती जाती है, बाहर नहीं निकलती है। वो ऐसे प्लांट्स जो सर्दी के अंदर नहीं चलते उनको उस ग्रीन हाउस में रखा जाता है और वो हीट जो सूरज की आई हुई होती है वो उसके अंदर कंजर्व होती है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। ये नेचुरल है, हम पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। वो गैसेस इतनी बढ़ रही हैं, इतनी गर्मी पैदा कर रही हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस एरिया में मैं रहता हूं हिसार, आप टीवी पर कई बार देखते होंगे, कोल्डेस्ट इन द रीजन, हॉटेस्ट इन द रीजन। टीवी पर हम कहते हैं और किसी काम के लिए नहीं, हिसार का नाम टीवी में तो आता है, वहां 49 तक टेम्परेचर जाता है गर्मी में, 49। वहां क्या आप जी सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मथीन, ये सारी जो है हम एयर के अंदर छोड़, जितने ज्यादा हम एयर कंडीशनर्स बनाएंगे, जितने ज्यादा हम फ्रिज वगैरह बनाएंगे, उन सब से जो है एनवायरमेंट के अंदर ये गैसेस ही तो आएंगी। ऐसे थोड़ी कूलिंग करेंगे, आपका कमरा कूल हो रहा है, एसी के बाहर उसके पास सामने खड़े हो जाओ ना, वहां देखो क्या हाल होता है, कितनी गर्म हवा आती है, अंदर इतना कूल कर दिया तो वो सारी गर्मी कहां जा रही है, बाहर एनवायरमेंट में जा रही है ना, उसको पोल्यूट कर रही है ना, वो आपके ही कारण कर रही है। और हम खुश हो रहे हैं, मैंने जी घर में हर कमरे में एसी लगाया हुआ है, मेरा अपने बच्चों के साथ हमेशा झगड़ा होता रहा, मैंने आज तक एसी नहीं लगाया अपने घर के अंदर। सो इसीलिए आप कहेंगे सर आप तो बहुत ही पुरानी ट्राइबल टाइप ऑफ लाइफ जीते होंगे, फिर तो किसी कबायली की तरह से जीते हो। मैं जीता हूं, मुझे तो अच्छा लगता है। नो एसी इन माई होम, नो कार इन माई होम, नथिंग बट बाबा इन माई होम। ओम शांति।